शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई।
ओम शांति। शिव महोत्सव में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को ज्ञान को सही स्वरूप में समझते हुए जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज्यादा आस्था और विश्वास के साथ कर पाएंगे और उसका असर हम अपने जीवन में देख पाएंगे। इसी विश्वास के साथ और इसी आस्था के साथ ये पूरा महोत्सव जो है वो हम मना रहे हैं। आज एक बार फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सौभाग्य खास माउंट आबू से है। हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा बहन, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उषा बहन, अगर हम देखें, हमने बात ये की थी, इनफैक्ट हमने काफी ऐसी बातें इस दौरान की हैं, शिव परमात्मा शिव के पूरे उस परिपेक्ष को जानने की कोशिश की है, सही स्वरूप को समझा है और खासकर जो गीता पर हम बात कर रहे हैं वो गीता उपदेश जो अब हमारे सामने बहुत क्लियर है कि वो परमात्मा शिव के महावाक्य हैं, जो उन्होंने, अगर हम अपनी पिछली कड़ी को देखते हैं तो श्री कृष्ण के उस स्वरूप को जो कलयुग में एक अति साधारण व्यक्ति के रूप में थे उसमें प्रवेश करके फिर ये उवाच किया, ये महावाक्य कहे हैं। सभी दर्शकों के साथ एक बार फिर ये शेयर करना चाहेंगे कि हर बार हमारी कोशिश है कि हम जो भी हम यहां ज्ञान ले रहे हैं उसे समझें, अंदर मंथन करें और सचमुच ये देखने की कोशिश करें कि आज जिस युग में है हम, वही महाभारत का युग है, वही महाभारत हो रही है, ना सिर्फ बड़े परिपेक्ष में बल्कि सूक्ष्म स्तर पर, छोटे स्तर पर, हमारे अपने दिलों में, हमारे अपने घरों में, परिवारों में, देशों में वो महाभारत नजर आ रही है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा रिवाइव कर लें ताकि वो बहुत से दर्शक जो नए जुड़े हैं वो भी जान जाएंगे कि कैसे हम ये समझें कि ये जो महावाक्य हैं ये परमात्मा शिव द्वारा दिए गए हैं।
क्योंकि बार बार भगवान ने जब कहा कि हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो फिर लुप्त हो जाएगा और फिर मुझे आकर के तुम्हें देना पड़ेगा। मानव जाति के लिए, ये मानव जाति के कल्याण के लिए ये ज्ञान दिया गया है। कहीं पर भी श्रीमद् भगवद गीता में ये नहीं कहा गया है कि भाई कोई एक जाति के लोगों के लिए या एक धर्म के लोगों के लिए है ये, लेकिन सारे मानव जाति के लिए है। या दूसरे शब्द में हम ये कहें कि गीता एक मानवता का शास्त्र है और इसीलिए सभी धर्मों की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए इसको सारूप में गौरवान्वित किया गया है कि ये सभी वेदों का सार है और स्वयं भगवान द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य होने कारण इसमें भगवान वाच, हर श्लोक में भगवान वाच ये बात आती है।
माता पिता है, बंधु सखा वो सबका सद्गुरु साथी है, जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा, आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, शिवता का सत्य ज्ञान दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो।
और बार बार, क्योंकि हम इस बात को भी समझते जा रहे हैं कि परमात्मा जो है वो धर्म संप्रदाय इन सभी बंधनों से ऊपर है,
ऊपर है
बिल्कुल, क्योंकि वो एक और हर धर्म में उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकारा गया है,
स्वीकारा गया है,
ज्योति स्वरूप जो बात है। और ये हम कितनी बार देख चुके हैं, जानते हैं इस बात को। एक बात हम उषा बहन यहां जरूर करना चाहेंगे कि जब भी गीता की बात आती है तो गीता ज्ञान यज्ञ की बात आती है। जहां यज्ञ की बात आती है तो अभी तक अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो यज्ञ मतलब हम वो हवन को उसमें देखते हैं कि हवन होता है और मंत्रोच्चारण होता है और हम कुछ चीजें जो है वो अर्पित करते हैं, तो वो ज्ञान यज्ञ क्या है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई सिम्बॉलिक होगा रीजन।
एक्चुअली तीसरे अध्याय में भगवान ने जब यही कहा कि मैं सर्वप्रथम आकर के ब्रह्मा द्वारा एक ज्ञान यज्ञ की रचना करता हूँ, और इसीलिए अर्जुन ने भी जब पूछा कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, तो यही बताया कि ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ क्या है? तो यज्ञ माना कभी भी दुनिया के अंदर कोई भी यज्ञ करते हैं दो पर्पस के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं, एक तो शुद्धिकरण और दूसरा शांति। तो भावार्थ ये है यज्ञ करने का कि एक अग्नि जलाते हैं और उस अग्नि के अंदर जौ तिल और घी ये तीन चीजों को स्वाहा करते हैं। आज दुनिया के अंदर न जाने कितने ऐसे यज्ञ हो गए होंगे कि जिसमें कितना घी स्वाहा हुआ होगा, कितने जौ तिल स्वाहा हुए होंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या संसार के अंदर ये अपने घरों के अंदर भी शांति आई है?
बिल्कुल, यहाँ वेरी ट्रू, हमारी पूरी श्रृंखला है, बार बार हम ये कह रहे हैं सही परिपेक्ष में देखते हुए, बहुत सही बात आप कह रहे हो जय बहन, हर घर में यज्ञ हुआ है, हर घर में हमने भावन किए हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। पंडित जी ने बताया, आप चीजें ले आते हैं और आप कर देते हैं, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है हम इस मंच के द्वारा, इस कार्यक्रम, इस श्रृंखला के द्वारा उसको सही परिपेक्ष में।
तो यज्ञ माना शुद्धिकरण और दूसरा उसमें ये तीन चीजों जो स्वाहा करते हैं उसके पीछे भी भावार्थ है। भावार्थ ये है कि जौ छिलके सहित होता है, लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है, और घी लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी धन का प्रतीक है। आज जीवन के अंदर या घरों के अंदर, परिवारों के अंदर अशांति का मूल कारण या अशुद्धि का मूल कारण अगर देखा जाए कि ये तीनों जब गलत दिशा में यूज हो रहे हैं तो जीवन में अशांति आती है। आज तन द्वारा बुरे कर्म हो रहे हैं, मन द्वारा बुरे विचार, नेगेटिव विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और धन बुरी आदतों के पीछे बुरे रास्ते के ओर जा रहा है। अग्नि क्या है? अग्नि है योग। योग एक अग्नि के समान है जो आत्मा का शुद्धिकरण करता है, लेकिन ये आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ये तीन चीजों को स्वाहा करने की बात है। योग के द्वारा ये तीनों का शुद्धिकरण करना है, माना के तन जो बुरे कर्म कर रहा है उसको करो स्वाहा। बुरे कर्म अब ये तन द्वारा न हो, उसके लिए मानसिक चेतना को जागृत करने की जरूरत है कि मन के अंदर हम शुद्ध विचार ले आए, बुरे विचारों से अपने मन को मुक्त रखें, और जितने अच्छे विचार हम अपने मन के अंदर ले आएंगे ये शांति का आधार है। और धन जो बुरे रास्ते पर जा रहा है या बुरी आदतों के पीछे जा रहा है तो ये आदतों को करो स्वाहा, क्योंकि जीवन में अशांति का कारण ही यह है। तो बुरी आदतों को करेंगे स्वाहा तो धन का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, मन का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, तन का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो वास्तव में ये यज्ञ करने की बात है जो ज्ञान यज्ञ है, समझ से किया गया हर कर्म। पहले के समय में लोग अश्वमेघ यज्ञ करते थे, है ना, रुद्र ज्ञान अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अब रुद्र ये शिव के लिए कहा गया है, रुद्र ज्ञान माना रुद्र परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया उससे अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए वो घोड़े को स्वाहा करते थे। अब वास्तव में देखा जाए तो घोड़े
मतलब स्वाहा करना, समर्पित,
हाँ,
करना,
समर्पित करना, तो घोड़े को स्वाहा करते थे। अब घोड़े को स्वाहा करने से क्या संसार के अंदर शांति हो जाएगी? लेकिन वास्तव में यहाँ पर ये बात है कि हमारा मन जो चंचल है,
जो घोड़े की तरह,
घोड़े की तरह है, और पंच इंद्रियां ये भी घोड़े की तरह हो गई है, ये भी चंचल है। तो रुद्र परमात्मा जब इस संसार में आते हैं और जो ज्ञान देते हैं उससे जो हमारी ये चंचलता है, तो ज्ञान से ही हम अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं। वो चंचलता उसकी समाप्त होती है।
हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने,
हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने,
हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने,
हमें बिल्कुल ही बदल दिया।
आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया।
जब भी यज्ञ हो रहा है तब मंत्रोच्चारण जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे, उस वक्त अपने मन में हम क्या संकल्प लें, क्या थॉट लें, क्योंकि हम उस यज्ञ में बैठे हैं।
यहाँ हम ये कहते हैं कि जब मन के अंदर शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं तो वही संकल्प एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक ऐसे प्रकंपन क्रिएट करते हैं कि जिस प्रकंपन में हर इंसान अपने जीवन के साथ उसको जोड़ सकता है। तो वो प्रकंपन हम ऐसे क्रिएट करें जो हमारे लिए एक ओरा बन जाए या जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच हो जाए, क्योंकि जितने ये संकल्प हमारे पावरफुल होंगे तो एक पावरफुल ओरा क्रिएट करते हैं,
और वो इनफैक्ट हमें तो सुरक्षित करेगा, हमारे आसपास हमारे अपनों तक भी पहुंचता जाएगा,
और घर का शुद्धिकरण, परिवार के अंदर शुद्धिकरण, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है, और उससे हरेक को जैसे शक्ति मिलती है, वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशंस ऐसे हैं जो वाइब्रेशंस स्वयं को तो एम्पावर करते ही है लेकिन वो दूसरों को भी एम्पावरमेंट देता है।
उषा बहन, हमने बिल्कुल सही परिपेक्ष में समझा कि हवन का सही या यज्ञ का सही मायने क्या है, और जिस भी प्रक्रिया में हो हम अगर उसे सही परिपेक्ष में देखते हैं तो
माना जो इंसान कर रहा है हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन अगर सच्चे भाव के साथ उस चीज को अपने जीवन में उतारे तो शायद उस करने का उसको जो एक सेटिस्फेक्शन मिले,
जो अनुभव है वो तब होना
वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज मनुष्य कर रहा है लेकिन इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन नहीं,
बिकॉज अंडरस्टैंडिंग
नहीं,
दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू नो, कि कहीं ना कहीं समझ में ही नहीं आ रहा होता। हम परिवार कह रहा है, पंडित जी कह रहे हैं, ये कोई भी कह रहा है और हम कर रहे होते हैं, तो दिस इज एक्चुअली अवेकनिंग। यहाँ हमें बिल्कुल समझ में आता है कि जब एक बात ये क्लियर हो जाती है, अब हम उस बात को उस परिपेक्ष में समझते हुए जब करते हैं तो उस एहसास को हम अपने साथ रखेंगे। एक और बात आगे मैं, क्योंकि हम शिव महोत्सव की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न परमात्मा शिव के साथ जब जुड़ता है तो शिवलिंग का जो एक चिन्ह है उसको साथ लेकर भी एक ऐसी बात जो कही जाती है कि बहुत से लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये प्रतीक है सृजन का, ये प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री का जो मिलन है और इस तरह से ये किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जब लोग हम जब शिवलिंग की पूजा के लिए जाते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं जब उसमें, तो यहां मैं चाहती हूं कि इस मंच के माध्यम से एक बात सामने आए कि वो शिवलिंग का प्रतीक है क्या, क्या वो स्त्री पुरुष के उस संबंध को दर्शाता है जो सृजन का प्रतीक है, या वो ज्योतिर्वास्तव
में क्या है कि परमात्मा को भी रचता कहा गया है कि परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि को रचते हैं, तो रचता वही है लेकिन वो उस चीज का प्रतीक नहीं है जो लोगों ने आम रीति से समझ लिया, लेकिन वास्तव में परमात्मा रचता है तो कैसे है उसकी कल्पना मनुष्य कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा की रचना का सारा आधार सूक्ष्म है और वो सूक्ष्म स्तर तक बुद्धि पहुंच सके ये इतना नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसको स्थूल वे में उसको समझ लिया है कि शायद इसी तरीके से उसको संसार की सृजना की होगी।
यहाँ आज क्योंकि आज हम जो हर परिपेक्ष ले रहे हैं, हम शिव और शंकर के भेद को जान रहे हैं, हम शिव और श्री कृष्ण के भेद को जाने हैं कि क्यों ये रही बातें जो हैं। इसीलिए आज क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से जो व्यक्ति हैं वो उनकी कहीं ना कहीं आस्था कुछ ऐसे होने लगती है कि ये क्या प्रतीक हुआ, तो क्यों ऐसा माना गया और वो शिवलिंग जो है वो प्रतीक क्या है।
वास्तव में ज्योतिर्लिंगम जो कहा, तो ज्योतिर्लिंगम लिंग का स्थूल अर्थ भी अगर लिया जाए ना तो लिंग का मतलब है स्वरूप। जैसे स्त्री लिंग कहा, पुलिंग कहा, यानी स्त्री का आकार पुरुष का आकार फॉर्म। तो इसी तरह ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति का आकार है, तो इसलिए वो भाव की बात आती नहीं। लेकिन जैसे कहा कि कलयुग के अंदर जब मनुष्य एक तमोप्रधानता के वश हो गए और जहाँ प्रकृति उसकी आंतरिक प्रकृति तमोप्रधान हो गई समय के प्रभाव के कारण भी, तो इसलिए उन्होंने हर बात को उस तमोप्रधान लेवल से ही सोचना प्रारंभ किया। और इसीलिए ये बात कि ये तो एक स्त्री पुरुष के मिलन की या उसी से सृजना करने की बात है, लेकिन परमात्मा स्वयं में ही मात पिता भी है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा हुआ है जब परमात्मा ने कि जब परमात्मा को सृष्टि रचने का संकल्प आता है परमधाम के अंदर, तो ये संकल्प आना ये एक गर्भ धारण हुआ। और इसीलिए परमात्मा जब अवतरण करते हैं तो जिस साधारण मनुष्य तन, जो श्री कृष्ण का साधारण तन का प्रतीक है, साधारण नर का स्वरूप है, तो उस नर में जो अवतरित हुए उसको नाम दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा इसलिए नाम दिया कि ब्रह्म का निवासी परमात्मा जो है उसने इसमें प्रकट होकर के या दिव्य अवतरण किया और वो गर्भ इसमें बोया। वो गर्भ इसके अंदर बोया और इसीलिए कहा कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। और ब्रह्मा ने जब संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया तो वास्तव में परमात्मा पिता हो गए। गर्भ को धारण करने वाला वो साधारण नर वो दूसरे अर्थ में माँ भी हो गई कि जिसके माध्यम से फिर संसार की रचना। अब वो रचना कैसे होती है, तो आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा की रचना की तो बात ही नहीं है, लेकिन आत्माओं के अंदर दिव्य संस्कारों को प्रस्फुटित करते हैं,
वो पैदा करती है। हाँ, बेसिकली
वो दिव्य संस्कारों को जो प्रस्फुटित करते हैं उससे एक दैवी सृष्टि का सृजन होता है।
अपने ब्रह्मा बाबा पूर्ण सत्य ज्ञानी शिव में मग्न रहे के बोले शिव की वाणी, सार गर्भिताये वाणी कल्याणी, सुन के इसे मानव से देव बने प्राणी। ब्रह्मा से है प्रस्फुटित वो शिव प्रदत्त नाद है।
ब्रह्मा से है प्रस्फुटित वो शिव प्रदत्त नाद है।
परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है, न कोई शिव के पूर्व था न कोई शिव के बाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है।
एक ये बहुत बड़ी क्लेरिफिकेशन हमारे सभी दर्शकों के सामने आई है कि अब अगर हम बात शिवलिंग की करते हैं तो लिंग यानी कि आकार, तो शिव का आकार वो ज्योति स्वरूप जो हम बहुत अच्छी तरह से, ना सिर्फ हिंदू धर्म की बात है बल्कि हर धर्म में वो पॉइंट ऑफ लाइट को जो है वो स्वीकारा गया है कि परमपिता परमात्मा जो है वो,
और वो जब परमधाम में तो वहां उसको ये गर्व यानी ये संकल्प उत्पन्न होता है कि अब सत धर्म की स्थापना करने का समय आया, तब वो अवतरित होते हैं और वो संकल्प का बीज उसमें रोपते हैं। तो बीज रोपने का कार्य तो किया है, लेकिन मनुष्य ने उसको स्थूल स्वरूप में ले लिया है,
क्योंकि जहां बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे तो बिल्कुल अब वो फिर हमारे सामने। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये समझ में भी आ रहा है कि क्यों ऐसा होता गया, क्योंकि जहां कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ फिर हमारा पूरे चारों तरफ वही बातें आ जाती हैं जो इसी शरीर से जुड़ी हुई है। तो इस शरीर से जुड़ती हुई जो जो चीजें होती गई हमने उसको उनको ईश्वर के साथ भी जोड़ा। बिल्कुल उषा बहन, ये तो बहुत हमारे सामने क्लियर हुई। एक और बात जो आज हम शिव महोत्सव मना रहे हैं तो हर एस्पेक्ट को ज्ञान के उसमें देखना चाहेंगे कि शिव परिवार की जहां बात होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो शिव परिवार कौन है, क्या वो शंकर परिवार है या वो शिव परिवार ही है? तो शिव का अगर परिवार है तो शिव तो जन्म लेते नहीं, वो तो उसमें आते नहीं मानव शरीर में, तो फिर उनका परिवार कैसे बने?
तो शिव का परिवार माना सूक्ष्म स्तर पर है, वो भी बात है, क्योंकि सारे संसार की आत्माएं यही शिव के परिवार की है। तो परमात्मा स्वयं में मात पिता अगर हो जाता है सारे, इसीलिए उसको जेंडर नहीं दिया है, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, परमात्मा न्यूट्रल है, माना दोनों है, वो मात पिता दोनों है। दाओ आर्ट और मदर एंड फादर यही कहते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता। तो परमात्मा स्वयं में मात पिता है और हम सब उसकी संतान है, तो उस मात पिता की संतान होने के नाते हम सब उस परिवार के सदस्य है। तो माना सारी मानव सृष्टि उस परिवार के सदस्य हो जाती है। इसीलिए तो भारत के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विशेष महत्व दिया गया कि सारा संसार हमारा परिवार है।
अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुंबकम्। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
लेकिन हाँ, शंकर की जहाँ बात आती है वहाँ शंकर का परिवार जो दिखाया है कि भाई एक प्रतीकात्मक रूप में ही अगर देखा जाए कि शंकर को एक देवता के रूप में दिखाया है, पार्वती एक देवी के रूप में दिखाया है, और फिर कहा जाता है कि शंकर जी को तपस्या करनी थी और इसलिए जब उन्होंने बताया कि मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, तब पार्वती जी ने कहा कि भाई मैं अकेली हो जाऊंगी तो कोई तो मुझे मिले। तो उस समय कहा जाता है कि दो पुत्र की रचना की, कार्तिकेय और गणेश जी की रचना की और उन्हें सौंप करके चले गए। और फिर जब तपस्या में से वापस आए तो उस समय गणेश जी तो आज्ञाकारी थे और इसलिए माता की रक्षा करने के लिए वो बाहर बैठे थे। तो कहा जाता है कि शंकर आए और जब उन्होंने अंदर जाने की प्रयत्न किया, कोशिश किया, तब गणेश जी ने उनको रोका। तो उस समय शंकर जी क्रोध में आ गए और सबसे पहला क्रोध उनके ऊपर ही निकला कि उसका गला ही काट दिया। अब गला काट दिया, इतना क्रोध, तपस्या करने के बाद
तो शांत
होना चाहिए, तो तपस्या का फल क्या क्रोध हो सकता है? तो फिर दुनिया में तो कोई तपस्या नहीं करेगा। वास्तव में सबसे पहले परमात्मा शिव भी संसार में जब आते हैं तो आकर के सबसे पहले सबका गला काट देते हैं। गला काटना माना वो सर उड़ा दिया। कौन सा सर उड़ाया?
अभिमान।
अभिमान। अभिमान का सर उड़ा करके फिर हाथी का सर लगाना माना विजडम। हाथी एक ही प्राणी ऐसा है जिसके अंदर विजडम मानी जाती है और इसीलिए उनको युद्ध के क्षेत्र में भी लोगों ने यूज किया। तो हाथी का स्वर लगाना माना विजडम का प्रतीक कि इतना वाइज बना देता। जब व्यक्ति के अंदर से अभिमान खत्म होता है तो विजडम जागृत होती है, ज्ञान प्रकट होने लगता है, और जब वो ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ सारी शक्तियां आती है। इसीलिए गणेश जी को जिस स्वरूप में दिखाया है तो सारी शक्तियां उसमें मौजूद है। सर विजडम का प्रतीक है। छोटी आंखें जो है, कहते हाथी की आंखें बहुत छोटी लेकिन दीर्घ दृष्टि। तो यानी जब व्यक्ति के अंदर विजडम आता है तो वो बहुत दीर्घ काल तक का सोच सकता है। इमीजिएट प्रेजेंट का सोचकर निर्णय नहीं लेता है लेकिन दीर्घ दृष्टि। उसके कान सूप जैसे दिखाए हैं। सूप का काम क्या होता है? किचड़े को बाहर फेंकना, अच्छी चीज को अंदर लेना। अर्थात उन्होंने कभी जीवन के अंदर बुरी बातों को ग्रहण नहीं किया। तो हमें भी अपने कान को इस तरह से बजाना है तो कोई फालतू बातें करने आए भी तो हमें फालतू बातों को अंदर जाने नहीं देना है, और फालतू बातों को दूर करना है और अच्छी बातों को ग्रहण करना है। उनकी सुंड जो है वो शक्तिशाली मानी जाती है। कहीं देखो तो पेड़ के पेड़ उखाड़ सकती है। और अगर हाथी के सामने कोई बच्चा आ जाए तो उसमें इतनी समझ है तो इतना जेंटली बच्चे को उठा करके अपने पीठ पर भी रख देता है। तो जेंटलनेस और स्ट्रेंथ दोनों का बैलेंस जीवन में बहुत जरूरी है। शक्ति और कोमलता दोनों का जीवन में बैलेंस चाहिए।
एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है, ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है,
यही सोचना भूल है।
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए,
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए।
ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए।
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
इस तरह की शक्तियाँ हमारे जीवन में आती है वो तब कि जब अभिमान को जीवन में से निकाला हो और जीवन के अंदर विस्तम ज्ञान को धारण किया हो, उस विवेक को धारण किया हो। तो परमात्मा आकर के संसार में सबसे पहले हम सबका वो गला काट देते हैं, ये प्रतीक है।
बहुत सुंदर, जो अभिमान से भरा। और इनफैक्ट पार्वती का पुत्र माना गया है जो गणेश जी को माना जाता है। तो पार्वती को हमने जो कहा था कि आत्माओं का प्रतीक है, हमने अपनी आगे की पिछली श्रृंखला में ये बात की थी। तो अगर हम देखें उषा बहन, पार्वती भी वो जो शिव है वो तो वही रहे, परमानेंट रहते हैं। पार्वती बार बार जन्म लेती हैं, उन्हीं की पूजा करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, और बार बार उन्हीं को प्राप्त करने की चाहती हैं, वो चाहत रखती हैं।
कारण यही है कि शिव अजन्मा है, तो वो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेते, लेकिन आत्माएं तो चोला बदलती रहती हैं। और इसलिए जब चोला बदलती रहती है तो अनेक स्वरूप है, और जब हमने उस शिव की शक्ति को अपने जीवन में धारण किया तो शक्ति स्वरूप हम बन जाते हैं, इस बात का प्रतीक है।
बहुत सुंदर, आज का ये पूरा जो चर्चा रही, बहुत सारी बातें अब समझ में आई हैं। और इन बातों को समझते हुए जब हम किसी भी पर्व और उत्सव की तरफ जाते हैं, और अब तो हम महाशिवरात्रि का वो परमात्मा शिव की वो जयंती मना रहे हैं, उस रात्रि से जो सुबह की बात कही जा रही है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।